अरुणिमा के घर के बाहर आस्तिक और अनंत खड़े थे। अनंत आस्तिक से गले लगते हुए कहता है, पापा आप जल्दी जा रहे हो? आस्तिक मुस्कुराते हुए अनंत के कान में धीरे से कहता है, वैसे बेटा मन तो मेरा घर जमाई बनने का करता है, पर क्या करूं, तुम्हारी माँ मुझे घर में घुसने नहीं देती। दो दिन के लिए तुमसे मिलने के लिए आता हूँ, उसमें ये रहने देती है, इतना ही काफी है। वरना तुम्हारी माँ कितनी भयंकर है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आस्तिक की बात सुनकर अनंत मुस्कुरा देता है। अरुणिमा दरवाजे के पास खड़ी थी, इसलिए वो उन दोनों की बातें नहीं सुन पा रही थी, पर उन बाप बेटे की जुगलबंदी को वो समझने की कोशिश कर रही थी। आस्तिक और अनंत एक दूसरे से अलग होते हैं तो अरुणिमा अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे के बीच? आस्तिक ने अनंत के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बाप बेटे की अपनी कुछ बातें भी हो सकती हैं, पर्सनल बातें, मेन्स टॉक, क्यों बेटा, है ना? अनंत मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है तो अरुणिमा घूर कर उन दोनों को देखने लगती है। ये बाप बेटे आपस में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं और अरुणिमा को उसकी भनक तक नहीं लगती है। आस्तिक गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन अनंत तुम पहले आ जाना। अमृता के भाई होने के नाते तुम्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं। और उसके बाद आस्तिक अरुणिमा की तरफ देखता है, जैसे कि वो अरुणिमा से कुछ कहना चाहता है, लेकिन अरुणिमा की आंखों में आज भी वही खालीपन था। अरुणिमा ने आस्तिक को देखकर कहा, जानवी से कहना कि अमृता की फ़िक्र ना करे, मैं कल देहरादून जा रही हूँ, वहाँ पर होटल का कुछ काम है, तो वापस आते वक्त मैं अमृता को अपने साथ लेकर ही आऊँगी। आस्तिक मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट हर बार से गहरी थी, क्योंकि इस बार अरुणिमा ने वापस महल आने के लिए हाँ कर दिया था। अब भले ही वो सिर्फ अमृता की शादी के लिए आ रही थी, लेकिन आस्तिक को पता है कि अरुणिमा आने के साथ ही आकाश के बारे में पूछेगी, और आकाश को कैसे वापस लाना है यह आस्तिक अच्छी तरह से जानता था। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन पर कुछ कहने लगा। वहीं दूसरी तरफ अरुणिमा देहरादून के लिए पैकिंग कर रही थी। उसे देहरादून में दो दिन का काम था और एक हफ्ते बाद अमृता के एग्ज़ाम खत्म हो रहे थे, तो अरुणिमा अमृता को अपने साथ लेकर ही सिंगल लौटने वाली थी। अनंत ने अभी अभी कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर ज्वाइन किया था। वो स्टूडेंट को लॉ के बारे में बताता था और कोर्ट में होने वाले चैलेंज से कैसे फेस करना है ये भी अनंत अच्छी तरह से जानता था। अगले दिन अरुणिमा देहरादून के लिए निकल जाती है, लेकिन उसने जाने से पहले अमृता को इस बारे में नहीं बताया था कि वो देहरादून आने वाली है। PGDAV कॉलेज, देहरादून। कॉलेज की कुछ लड़कियां एक कमरे के बाहर खड़ी थीं और उसमें से एक लड़की हैरान होते हुए कहती है, यार ये अमृता अपनी फ्रेंड्स को लेकर कहाँ चली गई है? आज हमारा एग्ज़ाम है आफ्टरनून में और इस अमृता का कहीं पता ही नहीं है, ऐसे में तो ये एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएगी। लेकिन तभी उसके साथ वाली लड़की कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जितनी टेंशन हमें इस एग्ज़ाम की हो रही है ना, उससे ज़्यादा टेंशन अमृता को है, क्योंकि 15 दिन बाद उसकी शादी है और वो शादी से पहले अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी बाकी फ्रेंड्स को लेकर रिवर राफ्टिंग पर गई है, और तू देखना एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले वो एग्जामिनेशन हॉल में होगी, देहरादून रिवर राफ्टिंग कैंप। एक लड़की चेंजिंग रूम से बाहर आती है, उसने इस समय रिवर राफ्टिंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके बॉडी पर सेफ्टी जैकेट भी था। अपने हाथों में ऑस्टिन का चप्पू लेकर वो लड़की स्टाइल से खड़ी होती है और आसमान को देखते हुए कहती है, राजकुमारी अमृता के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। राजकुमारी अमृता पृथ्वी और जानवी की बेटी, शक्ल से भली लेकिन शक्ल पर मत जाना, क्योंकि दिमाग से एकदम चालूचंट है। इसके दिमाग में हर समय एक नई खुराफात चलती रहती है। अमृता अपनी फ्रेंड नीतू के पास आती है और इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहती है, तू अकेली क्यों खड़ी है, वो कहाँ गई? नीतू अमृता के साथ उसके बैच की स्टूडेंट थी और उसकी रूम पार्टनर थी। नीतू ने अमृता को देखते हुए कहा, तू यहाँ पर सेफ्टी में लगी पड़ी थी और वो बिना सेफ्टी के बोट लेकर पानी में भी चली गई। अमृता ने जैसे ही ये सुना वो चिल्लाते हुए नीतू को देखकर कहती है, क्या बकवास कर रही है? नीतू मुंह पिचकाते हुए एक लंबी सी मुस्कान के साथ नामे सर हिलाती है। अमृता अपना सर पीट लेती है और भागकर पहाड़ी के किनारे पर आती है, जहाँ पर एक लंबी चौड़ी नदी बह रही थी। नदी के एक छोर पर एक छोटी सी बोट थी और उसे एक लड़की चप्पू से चलाई जा रही थी। अमृता जब उस लड़की को देखती है तो उस लड़की ने ना तो सेफ्टी जैकेट पहना हुआ था और ना ही उसने बेल्ट लगाई हुई थी। अमृता अपना सर पीट लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, भूमि मरना है क्या? लेकिन वो लड़की जैसे सुन ही नहीं रही थी, उसका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था। वो तेजी से अपनी बोट को इस किनारे से उस किनारे तक ले जा रही थी। अमृता, नीतू और वहाँ के लाइफगार्ड भी हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। भूमि उस बोट को लेकर दूसरे किनारे पर जाती है और वो जल्दी से बोट से उतरकर झाड़ियों के पास जाती है, जहाँ पर एक बकरी तारों में उलझी हुई थी। अमृता ये देखकर हैरान हो जाती है और बाकी सब भी हैरानी से उसे देख रहे थे। भूमि ने उस बकरी को तारों के बीच में से निकाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बकरी को अपनी गोद में लेकर दूसरे रास्ते से सूखी जमीन पर आती है। अब तक अमृता, नीतू और वहाँ के लाइफगार्ड भी वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने भूमि को अपनी तरफ आते हुए देखा तो अमृता अपने कमर पर हाथ रखती है और घूरते हुए भूमि को देखने लगती है। भूमि अपनी गोद में बकरी के बच्चे को लेकर मुस्कुराते हुए उनके पास आ रही। भूमि का वो पतला सा शरीर जिस पर उसके कपड़े चिपक गए थे, चेहरे पर एक चमक जिस पर पानी की बूंदें मोतियों का काम कर रही थी, टेढ़े मेढ़े से दांत और उस पर एक प्यारी सी मुस्कान।